बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से आरंभ करेंगे और इसका विषय है कुष्ठ रोग की औपचारिक शुद्धता। मुझे पुनः आपको स्मरण कराना होगा कि हमें कुष्ठ रोग से यहाँ निदान नहीं बताया गया है, यह एक औपचारिक शुद्धता की रस्म है। पिछले अध्याय में हमने कुष्ठ रोग के निदान पर निष्कर्ष को विस्तार से देखा था। वहां ऐसे कुष्ठ रोगी भी थे जिन्होंने उस समय के उपचार से चंगाई अर्थात छुटकारा को प्राप्त किया था। वर्तमान में हम जानते हैं कि कुष्ठ रोग का इलाज है, यह असाध्य रोग नहीं है और धर्मशास्त्र भी उसे ऐसा ही प्रस्तुत करता है। यह एक भयंकर रोग था और हमें पाप से संबंधित अनेक आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है। मित्रों, इस अध्याय में कुष्ठ रोगी के अंधेरे सफर में उजाले की एक किरण दिखाई पड़ती है और हमें ज्ञात है कि किसी चिकित्सक का कुष्ठ रोग के निदान में कोई दवा दारू व इलाज प्रस्तुत नहीं है, बल्कि यहाँ रोग के उपचार के बाद औपचारिक धार्मिक कृत्य की चर्चा की गई है। यह विधि विधान पूर्ण रूप से नमूने के तौर पर एक नहाने धोने अर्थात शुद्धता के बारे में बताया गया है। जब मानव ने अदन के बारे में पाप किया तो पाप ने मानव को परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप की इस दीवार ने दो दिशा प्रदान की जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही प्रभावित हुए। यह दिशा ऊपर की ओर परमेश्वर तक गई और मानव को पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी करार दिया। नीचे की दिशा में मानव दूषित हुआ और पाप से संक्रामित भी बना। कुष्ठ रोग इस प्रदूषण का संक्रमण में पाप की एक तस्वीर है। मित्रों, इस अध्याय की विशेषता में किसी घर में कुष्ठ रोगी के अद्भुत औपचारिक शुद्धता उपचार व्यवहार की समीक्षा की गई है। इस घर को भी कोढ़ी जैसा व्यवहार मिला था क्योंकि स्पष्टतः इसे भी संक्रामक मानकर जोर दिया गया। आइए हम इसकी रूपरेखा को देखें। कुष्ठ रोग से शुद्धता अध्याय 13 और 14। पहला, शिविर से बाहर कोढ़ी की औपचारिक सफाई पद 1 से 9। दूसरा, कोढ़ी रोगी के शिविर के अंदर औपचारिक शुद्धता पद 10 से 32। तीसरा, उस घर की औपचारिक शुद्धता जहां कोढ़ था पद 33 से 53। चौथा, कुष्ठ रोग शरीर के मुद्दे उनके औपचारिक विधि विधान तथा शुद्धता पद 54 से 57। आइए देखें शिविर से बाहर कुष्ठ रोगी की औपचारिक सफाई। लय व्यवस्था 14 उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसके कोढ़ी की व्याधि चंगी हुई हो। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दे कि यहाँ याजक कोढ़ी को चंगा करने नहीं परंतु वो चंगा हुआ है या नहीं उसको देखने के लिए कहा गया है। यह महत्वपूर्ण बात है और यह शुद्धता के दिन का नियम कुष्ठ रोगी के लिए है। यह धार्मिक विधि है जिसका अक्षरतः पालन करना आवश्यक था। कुष्ठ रोग से चंगा होने के पश्चात की बात है, याजक ने इस व्यक्ति को कुष्ठ रोगी घोषित किया था और अब याजक को ही उसे स्वस्थ घोषित करना है। मित्रों, याजक को कोढ़ी के निवास स्थान तक जाना और वहां उससे भेंट करना जरूरी था। कोढ़ी की हिम्मत नहीं थी कि वह बिना आज्ञा लोगों के मध्य समाज में उपस्थित हो, उसे इसकी मनाही थी। वह बंद था, पुरोहित उसके पास जाता है जिसे हम लुका के सुसमाचार 17 अध्याय उसके 12 पद में उदाहरण स्वरूप देखते हैं। किसी गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा था, हमारे महायाजक और महान चिकित्सक के व्यक्तित्व एवं कार्य की यहाँ अद्भुत समानता एवं तुलना है। वह स्वर्गिक महिमा से पाप श्रापित पृथ्वी पर उतर आया जहां मानव के पाप के कोढ़ से पीड़ित है। मित्रों, हम कुष्ठ रोगी होकर स्वर्गीय समाज के भागीदारी नहीं बन सकते हैं। हमने चांद पर पहुंचकर बड़ा अच्छा किया, परंतु चांद पर पहुंचकर हम पाप से पाप रहित नहीं बन सकते। न ही यह प्रभु यीशु के लिए आवश्यक था कि स्वर्गीय महिमा छोड़कर धरती पर आए और हमारे लिए अपने प्राण को दे। इब्रानियों के दूसरे अध्याय में इसका समुचित वर्णन मिलता है। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब तक बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि इसलिए जब लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को, निकम्मा कर दे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखता है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। इब्रानियों 2 अध्याय उसके 9-10 पद, 14-16 और 17 पद। मित्र, वह स्वर्गीय महिमा छोड़कर धरती पर उतर आया। पुरोहित को भी कुष्ठ रोगी के समीप जाना पड़ता है। हम गलतियों के पत्र 4:4-5 पद में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। हमें आवश्यक है कि इस बात पर जोर दें कि वह पापी को पाप के रोग से चंगा करने में उसके पास तक पहुंचा। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20 पद में पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर ने घोषणा की कि मानव का हृदय भ्रष्ट है, अतः केवल ईश्वर ही उसे शुद्ध कर सकता है। वह अकेला ही ऐसा करता है। 1 यूहन्ना 1:7 पद में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रों, आप देखें कि पुरोहित कुष्ठ रोगी के पास आकर क्या करता है। लय व्यवस्था 14:4-7 पद में हम पढ़ते हैं, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाएं। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लोहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोड़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। मित्रों, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि यह एक अद्भुत धर्म क्रिया होगी। मैं नहीं सोच सकता कि इससे अनोखा कहीं और कोई समारोह बाकी है। और सभी बलिदान मंडप की वेदी पर चढ़ाए जाते थे, परंतु बाद में परमेश्वर के आदेशानुसार मंदिर में चढ़ाए जाते थे। यह अपने में एक अनूठी बात है। कुष्ठ रोगी को मंडप से बाहर रखा गया, अतः याजक को उसके पास जाना पड़ा। बलिदानों की पीतल की वेदी मसीह के क्रूस के विषय में बताती है, परंतु क्रूस नीचे इस धरती पर है। उसे यहाँ हमसे भेंट करने को आना पड़ा जहाँ हम मौजूद थे। हम परमेश्वर से दूर बंद थे। बिना परमेश्वर के धरती पर हम अजनबी थे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे हम तक पहुंचना आवश्यक था, और वह आया। इस बलिदान में 2 जीवित स्वच्छ पक्षी चढ़ाने थे, और वे कबूतर या पंडुक थे। एक मार डाली गई जो मसीह की मृत्यु को बताती है, और दूसरी जीवित थी जो मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है। यह सुसमाचार के 2 पहलू भी हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 2 पक्षी मृत्यु एवं पुनरुत्थान को दिखाते हैं। भजन संहिता 51:7 में हम पाते हैं, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मसीह में छुटकारे की एक अद्भुत मिसाल है। आप देखते हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा होकर सिर हिला हिला कर कहता है कि वह यीशु पर विश्वास करता है। यह बचाने वाला विश्वास नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आपने उस लहू का इस्तेमाल स्वयं के लिए किया है। पहला योना 1:7 में हम पाते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रों, मिट्टी का बर्तन मसीह के मनुष्यत्व के विषय में बताते हैं। उसने हमारे शरीर को अपने ऊपर उठा लिया। हमारा मनुष्यत्व, पौलुस अपने आप को मिट्टी के बर्तन से तुलना करता है। दूसरा क्रंथियों के पत्री 4:7 में लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम इब्रानियों 4:15 में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मित्रों, यह धार्मिक कृत्य अजीब और सुंदर होनी है। एक पक्षी उस मिट्टी के पानी भरे बर्तन पर रखकर मारा जाता है जिसमें जीवंत जल भरा है। मसीह की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है जो अनंत आत्मा द्वारा स्वयं का बलिदान है। हम इब्रानियों 9:14 में पढ़ते हैं, लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पुनरुत्थान के सामान्य अर्थ को समझने के लिए दो पक्षियों का होना जरूरी था। जीवित पक्षी को मरे पक्षी के रक्त में डुबोया जाता कि उसका मेल उससे हो जाए, तब जीवित पक्षी को स्वतंत्र करके उड़ा दिया जाता। मसीह हमारे अपराधों के कारण दंडित हुए, परंतु हमें धर्मी ठहराए जाने के खातिर जी उठे कि हम मसीह में सुदृढ़ रहें। मित्रों, विश्वासी लोग ऐसे ही स्वतंत्र हैं जैसे वे जो स्वर्ग में पक्षी हैं। वे सारे धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान, परंपराओं और व्यवस्था से आजाद हैं। विश्वासी प्रभु यीशु का दास है। वह मसीह के मार्ग उसकी इच्छा के अधीन है। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मित्रों, इस जगत में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं और वे हैं कुष्ठ रोगी और शुद्ध कोढ़ी, यानी पापी व बचाए गए पापी। बस केवल यही दो हैं। जीवंत जल और रक्त दोनों का मिलन इस धार्मिक कृत्य में होता है। यूहन्ना ने हमारे लिए यह शब्द बड़ी सावधानी से लिखे हैं। मसीह जब क्रूस पर मरे तो सिपाहियों ने उनके छाती में भाला भोंका और उसके बगल से पानी और लहू बह निकला। यूहन्ना इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह आरंभ से ही परमेश्वर थे। वे देहधारी हुए, वे क्रूस पर भी ईश्वर थे और अपना बहुमूल्य रक्त बहाया। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। पहला यूहन्ना 5:8 में हम इसे पाते हैं। कुष्ठ रोगी के लिए किया गया विधि भी इसी प्रकार से अमर है। हम लय व्यवस्था 14:8-9 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 तक अपने डेरे से बाहर ही रहे, और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भावों की सब बाल मुड़ाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। मित्रों, आपको आभास हो गया है कि यह भी असाधारण सी बात है। बलिदान समारोह से स्पष्ट हो गया कि कुष्ठ रोगी शुद्ध और स्वीकृत हुआ। अब इसके पहले कि वह समाज में दाखिल हो, इस संस्कार से निश्चित हुआ कि उसका पुराना जीवन समाप्त हुआ और उसके समक्ष एक नए जीवन का प्रारंभ हुआ है। उसके कपड़े बदलना और उनके दाढ़ी बनवाना, ये सारी बातें उसके जीवन शैली की नई बातों की ओर संकेत करते हैं। मित्रों, जब एक विश्वासी मसीह के पास आता है तो एक बड़ा परिवर्तन होता है। संसार के सामने शरीर के कामों को त्याग कर एक नया जीवन आरंभ होता है। प्रभु यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, मत्ती 7:16 में। यह भी उसके बच्चों के लिए एक परीक्षण है। पुनः 7 में पूरी जांच प्रक्रिया और परीक्षण होता है। समाज में लौटने से पहले परीक्षण होना जरूरी है। मेरे विचार से कभी कभी हम नए धर्मांतरित और नए विश्वासियों को शीघ्र ही साक्षी का आमंत्रण देते हैं। विश्वासियों पर ध्यान देना और उनके प्रति सावधान रहना भी जरूरी है। उनके जीवन में नवीनता दिखाई पड़ना चाहिए। योनार्ची सुसमाचार 15:3 में हम पढ़ते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और हम यूहन्ना 17:17 में पढ़ते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मित्रों, आप कभी भी शुद्ध और पवित्र व ईश्वर के कार्य के लिए अलग नहीं हो सकते जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में पूर्ण रूप से मजबूत न हो गए हों। कितना महत्वपूर्ण है यह कि हम परमेश्वर के वचन को जानें। मेरा मानना है कि विश्वासी के जीवन के 7 दिन परिपूर्णता का वह समय है जब परमेश्वर उसकी कलीसिया के इस पृथ्वी यात्रा के दिन पूरा करके एक स्वच्छ और पवित्र कलीसिया करके प्रस्तुत करेगा। इफिसियों के पत्री 5:25-27 पद में भी हम इसे पढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखें लय व्यवस्था की पुस्तक 14:10 पद में। यहाँ पर हम देखेंगे कुष्ठ रोगी के लिए शिविर के अंदर स्वच्छता की रस्म लिखा हुआ है 14:10 पद में। और 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए। मित्रों, शुद्ध किया हुआ कोढ़ी अब मंडली में प्रवेश कर सकता है, परंतु जब वह ऐसा करता है तो उसे अन्य इसराइलियों के साथ प्रभु के सामने भेंट बलि चढ़ानी है। वह 2 मेमने लेकर आता है, 1 भेड़ी का बच्चा, मैदा और कुप्पी भर तेल। एक इसराइली को अपने जीवन में इतनी भेंट चढ़ानी जरूरी थी। इससे शुद्ध कुष्ठ स्त्री के स्वीकार होने की पहचान बनती थी। हम लय व्यवस्था 14:11-20 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और शुद्ध ठहराने वाले याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करें। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए, और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाएं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लोहे के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने के लिए सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपने अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। मित्रों, वह एक मेमना दोष बलि में चढ़ाकर स्मरण दिलाता है कि वह पापी है। उसके पापों की शुद्धता के लिए उसे उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के लहू से प्राप्त करना है। दूसरा नर मेमना पाप बलि के लिए है क्योंकि शुद्ध कोड़ी के स्वभाव में पाप है। मादा मेमना एक होम बलि के लिए है जो परमेश्वर के सामने मसीह के व्यक्तित्व को दिखाता है। तेल में सना मैदा अन्न बलि में मसीह के मनुष्यत्व की सौंदर्यता को प्रकट करता है। उसके कान में रक्त की बूंद लगाना यह बताता है कि अब मसीह की आवाज वह सुन सकता है जिसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दाहिने हाथ के अंगूठे पर खून का निशान स्वच्छ हाथ की ओर संकेत करता है तथा अब तुम ईश्वर की सेवा कर सकते हो का आदेश है। दाहिने पैर पर लहू का चिन्ह संकेत देता है कि तुम अब ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हो। सिर पर तेल उंडेलने से संकेत मिलता है कि वह पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित है। लय व्यवस्था 14:21-32 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा, दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए और दो पंडुक व कबूतरी के दो बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो, और आठवें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाएं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपने हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुकों व कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि के समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं कुष्ठ रोगी की कोठरी की शुद्धि, लय व्यवस्था 14:33-36 पद में। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारे निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है, तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। मित्रों, इस पद के अनुसार किसी घर में जाने का मतलब क्या है, यह समझना बहुत ही कठिन है। शायद कोई जीवाणु या फफूंद, व्याधि या सड़नाद घर में बैठ गई हो, तब याजक यदि घर का व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी दिख पड़े, तो उन्हें 7 दिन बाद फिर निरीक्षण करके पता लगाना है कि व्याधि बढ़ रही है व नहीं। हम ऐसे जगत में जी रहे हैं जो पूर्ण रीति से पाप से प्रदूषित भी है। यह पुराना घर अर्थात कुष्ठ रोगी कोढ़ी है। याजक के निरीक्षण के बाद इस घर को 7 दिन के लिए फिर बंद कर दिया जाए। फिर यदि वह पाप की व्याधि पाए जाए तो दीवार के दोषी भाग का प्लास्टर व ईंट पत्थर उखाड़कर अलग कर दें। आइए अब हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था 14:48 पद में। और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है घर को शुद्ध ठहराए। मित्रों, वही धार्मिक कृत्य जो किसी कुष्ठ रोगी के शुद्धिकरण के समय किया जाता है यहाँ भी दो पक्षियों सहित संपन्न होता है। हम 14 अध्याय उसके 49-53 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और उस घर को पवित्र करने के लिए दो पक्षी देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लोहू में और बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के, और वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। मित्रों, शरीर भी अन्य व्याधि और कुष्ठ रोग की स्वच्छता से संबंधित धार्मिक नियम है। हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 54-57 पद में। लिखा हुआ है, सब भांति की कोढ़ की व्याधि और शहवे और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और फूल के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार की कोढ़ की व्यवस्था यही है। मित्रों, कुष्ठ रोग संबंधित स्वच्छता के नियमों को लागू करने पर विशेष दबाव डाला गया है। ध्यान दें कि इस रस्म और रिवाज की मूल शिक्षा का उद्देश्य था यह सिखाना कि कब अशुद्धि है और कब शुद्ध हो गया है। यह एक महान आध्यात्मिक सच है और हमें सिखाता है कि आप और मैं आत्मिक कुष्ठ रोगी हैं। यदि आप और मैं बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने भरोसा रखें तो हम स्वर्गलोक में नहीं पहुंचेंगे। मुझे और आपको प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है ताकि हम स्वर्गलोक में पहुंच सकें। अन्यथा हम भी पुकार उठेंगे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और बाहर निकाल दिए जाएंगे। परंतु यीशु मसीह में होकर हम अपने प्रियों के समाज में शामिल होते हैं। मेरे मित्र, आज आप कहां पर हैं? क्या आप ऐसे कुष्ठ रोगी हैं जो यीशु मसीह के पास आकर शुद्ध निर्मल बन चुके हैं, या अब तक आप अशुद्ध बने हुए हैं? क्या आप अशुद्ध बने रहना चाहते हैं? यदि नहीं तो आज ही प्रभु के पास में आइए, क्योंकि वह आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम है। वह आपके जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, आपके जीवन को पवित्र कर सकते हैं और अपनी आशीष आपको दे सकते हैं। मित्रों, यहां पर हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य ही इस विषय के द्वारा से लाभ प्राप्त किए हैं और प्रभु के निकटता में आने की अवश्य ही कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही को हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, हर उसका पात्र रखना वो भी तुम्ही तो हो।